राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 24 मई 1993 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम
राम राम राम बोलो नारायण, खास बात कोई बोलो ये अपने प्रसंग कर रहा था कि ये सुखी दुखी कौन होता है। इसमें ये सबके अनुभव की बात है कि मैं ही सुखी दुखी होता हूं, वो समझे है क्या? तो मैं ही सुखी दुखी होता हूं, तो मैं ही सुखी दुखी होता हूं तो मेरी ही मुक्ति होगी, और मैं ही कर्म करता हूं और मैं ही भोगता हूं। इसमें कोई प्रश्न करो आप, मैं ही कर्ता भोगता, कर्ता भी मैं ही हूं उसका फल भोगता भी मैं ही हूं, और करता हूं उसमें शुभ और अशुभ कर्म करता हूं तो शुभ कर्म का फल अनुकूल परिस्थिति आती है, अशुभ कर्म का फल प्रतिकूल परिस्थिति आती है। तो परिस्थिति बनती है वो कर्म के अनुसार बनती है, और अनुकूल परिस्थिति है उसमें मैं होता हूँ और प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी होता हूँ तो वो मैं स्वयं होता हूँ। इसमें आपको शंका हो, कोई जिज्ञासा हो, बोलो।
दुखी सुखी होने वाला मैं है वो है तो नहीं है ना, होने वाला
है में तो दुख सुख है नहीं, मैं में दुख सुख है। हाँ ठीक है, आप ठीक है, मैं वो है में नहीं, तो हमें क्या मतलब, हम कहते हैं पेट में नहीं है, स्तंभ में नहीं है, क्या फायदा हुआ? हम कहते हैं मैं सुखी दुखी होता हूँ तो सुख दुख है में नहीं है, तो हमें पत्थर में नहीं है, क्या फायदा, हमारा फायदा क्या हुआ? हमें मतलब समझे, जैसे मैं सुखी दुखी होता हूँ इसका उत्तर हुआ कि सुख दुखी मेरे में है मैं सुख दुखी नहीं है नहीं, तो है मैं नहीं है तो पहाड़ में तो नहीं है, ऐसा कहना है क्या है? मैं नहीं कह दो तो थम्बे में नहीं है, क्या मतलब है? इसमें देखो आप और तो मत समझना, मैं इस विषय को समझने के लिए रखता हूं, अगर आपको नहीं हो तो मैं कहना शुरू कर दूंगा। आपको पसंद न हो तो दूसरी बात कर लू,
कल आपने कर दिया था ना थोड़ा सा,
कौन सा थोड़ी भी जिज्ञासा हो, थोड़ी भी शंका हो तो बोल, मैं तो उचित समझता हूँ बोलना, और मैं तो दूरी कर दूंगा। नारायण 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 नारायण
कहते हैं, इसमें भी नहीं है, ये सुखी दुखी होने वाला मैं ये बना हुआ है ना,
बना हुआ है, ये बात सीखी हुई है कि सुख दुखी होने वाला बना हुआ है उसमें है, ये तो सीखी हुई बात है। मैं सीखी हुई बात का आदर नहीं करता हूँ, मैं आदर करता हूँ अनुभव का। अनुभव के ऊपर आप चले तो बहुत जल्दी कल्याण हो जाए, और सीखी हुई बात को उम्र खत्म हो जाएगी, मिलेगा कुछ नहीं, ये मेरी धारणा है। मैंने इस विषय को समझा है, सीखी हुई बातों से फायदा नहीं होता है, सीखी हुई बात बाधक होती है, तत्व ज्ञान में बाधक होती है सीखी हुई बात, फायदा नहीं होता, कहीं नुकसान होता है। और अनुभव किया जाए तो तत्काल फायदा होता है, उसमें ऐसा नहीं आज सुन लो कल परसों को, ऐसा नहीं, आज भी अभी ऐसी बात। नारायण 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 गीता में आता है प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यन आदि उभावपि। प्रकृति और पुरुष ये अनादि है दोनों ही, और कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, और पुरुष सुख दुखानाम भुक्ति से हेतु उच्यते। यहाँ प्रकृति और पुरुष का विशेषण है, या मैं तू आदि का विशेषण नहीं है, ये इच्छा रखा वो मैं कह रहा हूँ। और विकारांश गुणांश वृद्धि प्रकृति संभव, ये प्रकृति से गुण और प्रकृति से विकार पैदा होते हैं प्रकृति से, और कार्य कर्म के कर्ता में प्रकृति हेतु है, और पुरुष है वो सुख दुख में हेतु है। तो पुरुष कौन सा है, ये पुरुष है प्रकृति और पुरुष का दो बाबू, अब वो पुरुष है तो सुख दुख में हेतु होता है, वो सुख दुख में हेतु होता है तो हेतु क्यों होता है, कौन होता है, तो इसका उत्तर है कि पुरुषार्थ प्रकृतिस्थ ही भूंगते, प्रकृतिस्थ पुरुष ही भोक्ता बनता है, और कारण गुण संगो से सदसद जीवन जन्म सु, वो प्रकृति में स्थित होकर प्रकृति जन्य जो सत्व सम गुण है उन गुणों के साथ संबंध जोड़ने से उस नीच योनियों में जाता है, उर्वगछन सत्वस्था मध्य तिष्ठा अधोगछन तामसा। तो कारण गुण संगो से सदस्य, अब ये जो गुणों का संग है प्रकृतिस्थ पुरुष भोगता है, तो प्रकृति पुरुष की जो एकता मानी हुई है, इस एकता मानियों को तादात्म्य अध्यास कहते हैं। ये तादात्म्य अध्यास है, मानो एक रूप हो गए प्रकृति पुरुष में, तब भोक्ता पुरुष होता है, ये बात आई। नहीं तो ऐसे अगर विचार करें हम प्रकृति पुरुष दोनों का, तो जो इमंता से दिखे ये प्रकृति है, जैसे ये स्थूल शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर है, ये कारण शरीर है, ये मन है, ये बुद्धि है, इंद्रिया है, ये प्राण है, ऐसे इंद्रिया आदि का ये सब है, तो इन सबको आप यह कहकर कहते हो यह मानो ये स्थूल शरीर, ये सूक्ष्म शरीर, ये कारण शरीर, सब इंद्रता से कह जाएंगे, प्राण भी मन भी बुद्धि भी इंद्रता से कह जाएंगे, और जितना संसार मात्र अनंत ब्रह्मांड है सबके सब इंद्र दश गिर जाएंगे, ये है। इन सबका प्रकाशक एक है, वो चेतन है। जैसे ये शरीर सब दिखते हैं, इनको दिखाने वाला एक प्रकाश है, उस प्रकाश में ये चीज दिखते सब दिखते हैं। तो ऐसे अनंत ब्रह्मांडों को एक प्रकाश देने वाला, आश्रय देने वाला, आधार रूप है, सत्ता स्फूर्ति देने वाला, उनकी मदद करने वाला एक चेतन है। ये हुआ सब जड़, वो हुआ चेतन, ये हुआ प्रकाश, वो हुआ प्रकाशक। ये बात हुई। अब इसमें आप विचार करो तो मैं कहाँ हुआ? ना मैं प्रकाशी हुआ है, ना मैं प्रकाशक हुआ है। और ये इंद्रियां है, अंतकरण है, स्थूल सूक्ष्म शरीर है, ये तो जानने में आते हैं, पर मैं भी जानने में आता है क्या? इनको आपने देखा है, स्थूल सूक्ष्म शरीर देखा है, शरीर है, ये हाथ है, ये अंगुलियां है, ये माथा है, ये धड़ है, ये पैर है, ये तो आपने देखा है। इसमें जो सूक्ष्म पांच ज्ञानें भी हैं, पांच कर्में भी हैं, पांच प्राण है, पांच मन बुद्धि है, इसको सबको आप इंद्र दश कहते हो। और कारण शरीर है, वो एक स्वभाव है, एक अगर कुछ नहीं जानते हम बुद्धि से, अगर कुछ नहीं जानते तो कुछ नहीं जानता, ये कारण शरीर है, ये सब है। परंतु मैं है क्या? मैं की खोज करूं, मैं किस में आएगा ये बताओ। सबसे मुख्य मैं होता है, पर सबसे मुख्य मैं होता है इसका पता नहीं क्या है ये मैं, आप बताओ। गीता कहती है अहंकार बूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, महाभूतानि अहंकारो बुद्धि महाभूतानि अहंकारो ही कहा। वहाँ भूमि आपो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इतिमे भिन्ना प्रकृतिष्टभा ये आता अपरायम इतस्तन्याम प्रकृति बुद्धि में पराम। इससे अन्य प्रकृति है वो परा है, वो जीव रूप है। ये लम्धारी में जिसने संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है वो परा प्रकृति है, ये अपरा प्रकृति है। तो अहम हुआ अपरा प्रकृति, महाभूतान्य अहंकार, यहाँ भी अहंकार आया क्षेत्र में, और भूमि बोधन वायु खलु मनो बुद्धि अहंकार भिन्न, ये भी अहंकार आया अपरा प्रकृति में। तो अहंकार आया अपरा प्रकृति में, तो ये अहम है ये अपरा प्रकृति है, तो क्या अपरा प्रकृति का नाम अहम है? अथवा जो भगवान की परा प्रकृति है उसका नाम अहम है? ये मैंपन क्या है जो आपके अध्ययन है, जैसा आप विचार उसे बताओ। आपने अभी तक जितना अध्ययन किया है, पढ़ाई की है, सत्संग की है, सुना है, विचार किया है, इसमें जो निर्णय किया है उस निर्णय के अनुसार मैं क्या चीज है बताओ।
ہوں ایسا سوچتے تو میں اور پرکرتی کا
میں ہوں تو میں ہوں پرنتو میں ہوں ہوں میں تو ستا ہوتی ہے میں کیا چیز ہے اس لیے میں نے بتائی اپرا پرا پرگتی بتائی اس میں میں کیا ہے پرا ہے تو اپرا ہے کیا ہے میں جی
اپرا پرگتی
اپرا پرگتی ہے تو اپرا پرگتی جڑ ہے کہ چیتن ہے بتاؤ جڑ ہے تو میں جڑ ہے کیا جی میں پر جڑ ہے
میں جڑ ہے
تو جڑ میں ہے تو میں جڑ ہے تو جڑ سے اپنے کیا مطلب میں سے اپنا مطلب ہی نہیں ہے تو بھائی میں جڑ اتنا تعداد میں کیسے ہوا میں سے جڑ ہے اپنا پرگتی ہے میں اہنکار کا نام میں ہے تو جڑ پرگتی ہوئی جڑ پرگتی میں ہوا ٹھیک نہیں آیا بڑھیا آپ بتاؤ جڑ پرگتی میں کیسے ہوا میں کھاتا ہوں پیتا ہوں چلتا ہوں سنتا ہوں سمجھتا ہوں کہتا ہوں بولتا ہوں میں سنتا ہوں سمجھتا ہوں میں تو جڑ پرگتی سمجھتی ہے کیا
جی جہاں اب آپ بول رہے ہیں نا یہاں یہ تو میں ہے یہ جیو روپا ہے پرا پرا میں ہے
یہ کہتے پرا پرکرتی کا ہے
تو آپ پرا کہتے ہیں وہ اپرا کہتے ہیں تو بھائی کوئی پتا نہیں جن سے پڑھائی کی ہے نا یہ بولو یہ بولو پتا لگا ہر ایک بولنے کا ادھیکار نہیں ہے اس میں ہر ایک کو بولنے کا ادھیکار نہیں ہے جن لوگوں نے ویدانت پڑھا ہے پڑھائی کی ہے گرنتھ پڑھ رہے ہیں انہیں بولو دوسرے بولنے کا ادھیکار نہیں ہے تو کیا بولے گا جس نے وچار ہی نہیں کیا ہے پڑھائی نہیں وہ کیا بولے گا اس پر ہم بولے گا ڈھنگ سے وہ بولتا ہے جس نے اس بچے کو سمجھا ہے بتاؤ تو بتا گا کیا میں ہے نہیں ہے ہی نہیں میں کیا بتاؤ گے کسی نے میں کا انبھو کیا ہو تو بتاؤ بھائی میں یہ ہوں ایسا انبھو کیا ہو تو بتاؤ ہم من کو بتا سکتے ہیں بدھی کو بتا سکتے ہیں اہنکار اہنکار ہے ابھیمان ہے اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں پر میں کیا ہے اس کو بتاؤ اپنا ادھیئن سے بتاؤ بھائی آپ نے برسوں ادھیئن کیا ہے نا تو برسوں تک آپ ادھیئن کیا تو ان سے پوچھوں گا بتاؤ میں کیا ہے آپ نے بھی بہت کیا ادھیئن کیا ہے دھیان یگیہ کیے ہیں ایسا کیا ہے ابھیاس کیا ہے ایکاتما ابھیاس بھی آپ نے کیا ہے بھوکے رہ کر بھی آپ نے ابھیاس کیا ہے کتنا دن بھوکے رہے تھے کتنا دن کتنا دن بھوکے ادھک سے ادھک کتنا دن بھوکے رہتے ہو سال میں کرتے ہو تو
40 دن
اور 40 دن بھوکے رہ کر ابھیاس کیا ہے اور ادھیئن بھی کیا ہے اور چرچا بھی کی ہے اور گیان یگیہ بھی کیا ہے کیا ہے کہ نہیں کیا نا تو وہ بتاؤ میں کیا ہے بتاؤ جو ہر ایک نہیں بتا سکتا یہ کیا بتائے گا آپ نے ادھیئن کیا پڑھائی کی ہے کیا ویدانت کی ہے ہم تو بتاؤ میں کیا ہے
من میں جو ہے جڑ اور چیتن کی گرنتی का नाम है।
ग्रंथि क्या है ये तो सुनी हुई सीखी हुई बात है। अनुभव बताओ अनुभव। जड़ चेतन ही गांठी पड़ी गई यद्यपि मिसा छूटन कठिन नहीं, ये तो रामायण में लिखा है। तो लिखी हुई बात याद कर ली। मैं याद नहीं पूछता हूँ, मैं पढ़ाई नहीं पूछता हूँ। आपने पढ़ करके समझ करके साधन करके और आपने जो ठीक अनुभव किया उस अनुभव में मैं क्या है ये पूछता हूँ। अच्छा तो मैं प्रतीत नहीं होता, मैं नहीं होता, मैं होता है प्रतीत नहीं होता वो। ये तो फिर अलबत्त अनुभव की बात है। पर वो मैं जो मैंपन है ये प्रतीत होता है कि प्रत्येता है कि प्रतीति है कि प्रत्येत्य है। बालूप में प्रतीति का विषय है कि प्रतीति है कि प्रतीति करता है। प्रतीति में तीन बात हो गई, एक प्रतीत होने वाला, एक प्रतीत प्रतीति कर रहा, एक प्रतीत प्रतीत करने वाला, एक प्रतीत जैसा दृष्टा और दृश्य और दर्शन तीन होते हैं ना, ऐसे प्रतीति होती है वो दृश्य हुआ और प्रत्येता उसका प्रतीति करने वाला प्रत्येता होता है और प्रतीति मात्र होती है। तो प्रतीति हुई और प्रत्येत्य हुआ और प्रत्येता हुआ तो ये त्रिपुटी हुई। उस त्रिपुटी में मैं क्या है
प्रतीति है
प्रतीति मात्र। तो प्रतीति मात्र है तो प्रतीति मात्र तो असत्य होती है।
तो असत्य है सत्य कैसे हो, सत्य है ही नहीं है? सत्य है ही नहीं वो।
हाँ
तो
वो मैं नाशवान है।
नहीं प्रतीत हो रहा है, अगर भूम स्थित होने के बाद प्रतीत होना चाहिए फिर अगर हो तो वो
तो प्रतीत भी मैं नाशवान है।
नाश तो हो तो नाश हो ना,
तो मैं नहीं है तो मैं नहीं है। पूछोगे मैं नहीं है भाई, मैं नहीं है क्या? मैं का अभाव है,
प्रकृति का अस्तित्व भी नहीं है तो मैं कहाँ सिद्ध होगा? प्रकृति का अस्तित्व भी नहीं है तो मैं सिद्ध कहाँ होगा?
प्रकृति का भी जब अस्तित्व नहीं है तो मैं
देखो मैं पुस्तकों की बात नहीं पूछता हूँ, मैं सीखी हुई बात नहीं पूछता हूँ। कितनी बार कहूँ, तीन बार तो कह दिया, फिर कहता हूँ मैं सीखी हुई वेदांत की बातें नहीं कहता हूँ। आपने जो साधन किया है, पढ़ाई की है, एकांत में अपने विचार किया है, 40-40 दिन तक भूखे रहे हो, आपस में चर्चा की है, उनसे निर्णय निर्णीत में क्या है? तेरा चारा नहीं है ना। यानी क्या पढ़ा? वेदांत पढ़ा है? पढ़ा है या?
अरे आपकी पुस्तक पढ़ी है, वेदांत नहीं
पढ़ा। हम तो वेदांत पढ़ी है, मारी पुस्तक पढ़ी है जो बता रही, मारी पुस्तक के अनुसार बता बता।
जिसमें जड़ की तो आकर्षण है, जिसमें जड़ का आकर्षण है और चेतन की पिपासा है वही मैं है। तो जड़ के आकर्षण को मिटा दो तो महाराज जी ऐसे पढ़ा है कि जिसमें जड़ का तो आकर्षण है और चेतन की लालसा है वही मैं है। जड़ का आकर्षण छोड़ दो तो बस मैं खत्म रह जाएगा।
ठीक है, ढंग से कहता अभी तक ढंग से गई बात और क्या हुई अभी तक सीखी हुई है, परंतु सीखना भी नजदीक पहुंच गया इतना है। सीखना भी नजीक पहुंच गया तो सीखना सार्थक हो जाता है, वास्तव में अनुभव हो जाए ठीक तरह से फिर संदेह नहीं होता, फिर तो साफ हो जाता है एकदम। तो इसमें क्या आप तुम्हारे कहने से ये सिद्ध हुआ कि एक है भोग इच्छा, एक है मोक्ष इच्छा। भोग इच्छा और मोक्ष इच्छा दो जिसमें रहती है उसको मैं कहते हैं। संसार के भोगने की इच्छा है तो एक अपने मुक्ति होने की इच्छा है, कल्याण हो जाए मेरा, तो कल्याण की इच्छा है मोक्ष इच्छा, और संसार की इच्छा ये भोग इच्छा, तो भोग इच्छा और मोक्ष इच्छा दोनों मिला हुआ है, उसका नाम है मैं। ये मेरी ग्रंथों से बात करते हैं, ये और पढ़ेंगे नहीं करते हैं, मेरे ग्रंथों में पढ़ी हुई बात करते हैं। और आपने क्या निर्णय किया वो आपको बताओ। मैं तो बात करूँ वही कहूँ जो कथा ग्रंथों में नहीं लिखाई है, लिखी है कही है, वही बात मैं तो कहूंगा। तो भोग से भोगे चार मोक्ष इच्छा दोनों मिला हुआ नाम है। उसमें भोगे इच्छा तो पूर्ति होती नहीं, पहले कई ब्रह्मा हो खत्म हो जाए तो भोगे इच्छा पूरी नहीं होती, होती नहीं पूरी। क्यों नहीं होती? कि भोग तत्व है नहीं, वो नाशवान है, उसको भोगना चाहते हैं, वो भोग्य भोग्य वस्तु है ही नहीं। तो भोग्य वस्तु नित्य हो तो भोक्ता बने, भोग्य वस्तु नहीं है तो भोग बनेगा नहीं। और मोक्ष इच्छा है, वो मोक्ष इच्छा है, वह मुक्ति स्वतः है, वह हो सकती है, रहे मुक्ति है। तो जब भोग इच्छा मिट जाएगी तो मोक्ष इच्छा पूरी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी तो निर्मोह निरंकार हो जाएगा। ये मेरे ग्रंथों की बात है, ग्रंथों की अपने लिखाई हुई बातें है। तो आपका निर्णय मैं पूछूंगा, आपने अंत में निर्णय क्या किया है, अनुभव क्या किया है, इनसे इस पढ़ाई करके अनुभव क्या किया है? अच्छा भोगेच्छा कैसे मिटे, अब ये प्रश्न आएगा तुम्हारे सब, ये प्रश्न करेंगे तुम्हारे। मैं कहता हूँ तुम बैठ जाओ, तुम्हारी इतनी पढ़ाई की हुई नहीं है, मेरी पुस्तक पढ़ हुई, एक व्यक्ति की पुस्तक पढ़ने से क्या होगा?
आपको व्यक्ति नहीं मानता हूँ महाराज।
क्या मानता है, क्या मानता क्या है?
आपको व्यक्ति नहीं मान रहा
हूँ। क्या मानता होता व्यक्ति नहीं तो क्या है भाई? तो इसमें ये एक खास काम क्या है, उस विवेचन के अनुसार खास काम क्या है हमारा, ये आप सोच बताओ। भोगेच्छा मिटाना है, इतना ही काम हमारा, और कोई जरूरत नहीं, किसी बात की जरूरत नहीं। जैसे मेरे पुस्तकों पढ़ने से निर्णय हुआ तो उनमें केवल भोगेच्छा मिटाना है, उद्योग इतना ही है, पुरुषार्थ इतना ही है। आप बताओ क्या उद्योग है हमारा, हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए, आप बताओ अपने अध्ययन के अनुसार।
वासना रहित होना ही काम है हमारा।
वासना रहित सही बात है, वासना रहित है तो वासना रहित कैसे हो? अब ये प्रश्न आया खास हमारे अभी जिम्मेवारी में, प्रश्न आया कि वासना रहित कैसे हो, उसका उपाय क्या सोचा है आपने, और आपने उपाय सोच करके जो काम में लिया है उससे आप सफल जीवन हो गए कि नहीं? जिसमें हम औरों को भी बता सकें, भाई तुम भी करो, हम भी करें।
संसार में दुख बुद्धि होने से हमारा नहीं तो
है। संसार में तो दुख सुख दोनों है,
दोनों तो है, मगर उसमें जो है बात न रही होने का उपाय दुख बुद्धि।
दुख बुद्धि होने से फासला मिट जाती है, ये करके देखा आपने। मैंने पूछा उसको तो ये बात कोई कहे तो ये कह सकते हैं, पुस्तिका में लिखा है कि भोगेचा मिट जाए, वासना मिट जाए तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। गुरु गोस्वामी जी महाराज ने कहा है मिटी मन की वासना नव तद भये नाश, तुलसी केते पचमुवे दे दे तन को त्रास। मिटीर मन की बात और नौ तो भयनाश, तुलसी केते पच मुए दे दे तन को त्रास। नारायण 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 नारायण।
इस तरह तो ये साबित होता है मिटी नहीं।
हाँ जी,
आपने तो कहा इससे तो ये साबित होता है मिटी नहीं,
मिटी नहीं,
ऐसे साथ देते रहे।
अब उठगी अपन वो शर्त का सोचा, आप बताओ न बताओ आप दबाव नहीं डालता मैं। अपने चित्त में संतोष ठीक हो गया, वो ठीक है।